ਇਹ ਪਾਠਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੂਕਸ਼ਮਣਾ ਨਾੜੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉਸਕੇ ਭੀਤਰ ਤੀਨ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਾੜੀਆਂ ਕੇ ਕੇਂਦਰੋਂ ਕੇ ਵਰਣਨ ਕਰ ਦੇਣੇ ਸੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਹੋਗੀ। ਵਾਸਤਵ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਮੈਂ ਜਿਤਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਹੈ ਉਨ ਸਭ ਕੋ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਪਿੰਡ ਕੇ ਇਸ ਭਾਗ ਮੈਂ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕਰ ਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਸੁਖਮਣਾ ਨਾੜੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤ੍ਰਿਕੋਣ ਜੋਨੀ ਮੰਡਲ ਕੇ ਮੱਧ ਸਥਾਨ ਪਰ ਜਹਾਂ ਸੇ ਜਾਂ ਮੇਰੂਦੰਡ ਕੇ ਭੀਤਰ ਹੋਤੀ ਹੋਈ ਉੱਪਰ ਕੀ ਓਰ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਅਵਸਥਾ ਮੈਂ ਬੰਦ ਰਹਿਤਾ ਹੈ, ਇਸੀ ਕਾਰਨ ਇਸਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਵਿਕਾਸਿਤ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਪਿੰਗਲਾ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਇਸ ਤ੍ਰਿਕੋਣ ਮੰਡਲ ਕੇ ਬਾਮ ਔਰ ਦਕਸ਼ਿਣ ਭਾਗ ਸੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਓਰ ਚੱਕਰੋਂ ਕੋ ਛੂਤੀ ਹੋਈ ਚਲਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਮੇਂ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਹੋਤੀ ਰਹਿਤੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਤ੍ਰਿਕੋਣ ਜੋਨੀ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਏਕ ਅਤੀ ਸੂਕਸ਼ਮ ਵਿਦਯੁਤ ਸਮਾਨ ਅਸਫੁਤ ਦਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੀ ਨਾੜੀ ਲਿਪਟੀ ਹੋਈ ਪੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਏਕ ਐਸੀ ਸਰਪਣੀ ਸੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੀਨ ਲਪੇਟੇ ਖਾਏ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਪੂੰਛ ਕੋ ਮੁੱਖ ਮੈਂ ਦਬਾਏ ਸੰਖਾਕਾਰ ਹੋ ਕਰ ਸੋ ਰਹੀ ਹੋ, ਇਸੀ ਕੋ ਕੁੰਡਲਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਹਿਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਨਾੜੀ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸੇ ਸੁਪਤ ਜੈਸੀ ਪੜੀ ਰਹਤੀ ਹੈ। ਇਸਕਾ ਸਰੀਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਬਾਹਜ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਸ਼ਚਾਤ ਸਰੀਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅਭੀ ਤੱਕ ਇਸਕਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੇ, ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਯੂਨਾਨ ਰੋਮ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ੋਂ ਕੇ ਤਤਵੇਤਾ ਜਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਸੇ ਸਾਰੀ ਵਿਦਿਓਂ ਕਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਫੈਲਾ ਥਾ, ਇਸ ਸੇ ਪਰਚਿਤ ਥੇ ਅਫਲਾਤੂ ਤਥਾ ਪਿਗਾਗੋਰਸ ਜੈਸੇ ਆਤਮਦਰਸ਼ੀ ਵਿਦਵਾਨੋਂ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸਕਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਕੇਤ ਪਾਇਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਭੀ ਪਾਸ ਇੱਕ ਐਸੀ ਉਤਪਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਜੋ ਮਸਤਕ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਅਰਥਾਤ ਬੁੱਧੀ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੋ ਉਜਲ ਕਰ ਦੇਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜੈਸੇ ਮਨੁਸ਼ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੇ ਲਗਤੀ ਹੈ। ਕੁੰਡਲਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾੜੀ ਜਦੀ ਕਿਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ ਆਪਣੇ ਲਪੇਟੋਂ ਕੋ ਖੋਲ ਕਰ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਇਸਕਾ ਮੁੱਖ ਸੁਖਮਣ ਨਾੜੀ ਕੇ ਭੀਤਰ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤੋ ਇਸਕੋ ਕੁੰਡਲਨੀ ਕਾ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਹੋਣਾ ਕਹੇਂਗੇ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁਸੱਜਤ ਕਮਰੇ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਕੇ ਤਾਰ ਨਾਨਾ ਵਰਣ ਕੇ ਗਲੋਬ ਝਾੜ ਫਨੂਸ ਤਥਾ ਬਿਜਲੀ ਕੇ ਯੰਤਰ ਪੱਖੇ ਆਦਿ ਲਗੇ ਹੋਂ ਤੁਮ ਬਿਜਲੀ ਕੇ ਬਟਨ ਦਬਾਨੇ ਸੇ ਸਭ ਕਰਮਸ਼ਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਣੇ ਤਥਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਬ ਇਸ ਕੁੰਡਲਨੀ ਰੂਪੀ ਬਟਨ ਕੇ ਦਬਾਨੇ ਸੇ ਵਿਦਯੁਤ ਕਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸੁਖਮਣਾ ਰੂਪੀ ਤਾਰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਬ ਕਰਮਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰੋਂ ਔਰ ਨਾੜੀਆਂ ਕੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਕਰ ਪਰ ਜਾਂ ਕੁੰਡਲਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੈ ਅਧੋਮੁਖ ਸੇ ਊਰਧਮੁਖ ਹੋ ਕਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਬ ਜੇ ਆਗਿਆ ਚੱਕਰ ਪਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਬ ਸੰਪਰਗਿਆਤ ਜਬ ਸਹਸਰਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਬ ਸਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰੋਧ ਹੋ ਕਰ ਅਸੰਪਰਗਿਆਤ ਸਮਾਧੀ ਕੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰੂਪ ਮੈਂ ਯੋਗਿਅਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਮੈਂ ਮਨੁਸ਼ ਕੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਕਾ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ੀਘਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੁੰਡਲਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇ ਸੁਖਮਣਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣੇ ਪਰ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਅਨੁਭਵ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਉਨਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਕਿੰਤੂ ਹਮ ਕੁੰਡਲਨੀ ਜਾਗਤ ਕਰਨੇ ਕੇ ਕੁਛ ਉਪਾਏ ਤਥਾ ਸਾਧੂ ਕੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹਾਂਜੀ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇਣਾ ਅਵਸ਼ਕ ਸਮਝਦੇ ਹੈ। ਕੁੰਡਲਨੀ ਜਾਗਤ ਕਰਨੇ ਕੇ ਉਪਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੁੰਡਲਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਔਰ ਸੂਕਸ਼ਮ ਹੋਣੇ ਪਰ ਸਾਤਵਕ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਤਹਕਰਨ ਈਸ਼ਵਰ ਕੀ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਔਰ ਪਰਪੱਕ ਬੈਰਾਗ ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਮੈਂ ਅਕਾਗਰਤਾ ਅਰਥਾਤ ਨਿਸ਼ਚਲ ਧਿਆਨ ਸੇ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਹੋਤੀ ਹੈ। जहां कहीं आप समाज किसी मनुष्य में अलौकिक शक्ति अद्भुत चमत्कार तथा असाधारण ज्ञान का विकास देखने में आवे तो समझना चाहिए कि पूर्व जन्म के किन्हीं सात्विक संस्कारों के उदय होने अथवा हृदय पर सात्विक प्रभाव डालने वाली अन्य किसी घटना से कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर सुखमना के मुख में चले गई है, जिस पर पृथ्वी में लगे हुए नल द्वारा पानी ऊपर लाने के लिए केवल नल के ऊपर लगी हुई मशीन को चलाने से नाली से पानी स्वयं ऊपर आना आरंभ हो जाता है। इसी प्रकार साधना पाद में चतुर्थ प्राणायाम की पांचवी विधि द्वारा कुंडलिनी शक्ति को चेतन करके सुखमना में लाने का यत्न किया गया है। ते निम्न लिख प्राणायाम तथा मुद्राएं कुंडलिनी शक्ति को चेतन करने में सहायक हो सकती है। वस्त्र का कपाल पत्ती सूर्य भेदी प्राणायाम इत्यादि चतुर्थ प्राणायाम, महाबंध, महावेद, महामुद्रा, केसरी मुद्रा, विपरीत करणी मुद्रा, अश्विनी मुद्रा, योनि मुद्रा, शक्ति चालनी मुद्रा इत्यादि। किंतु ये सब बाह्य साधन हैं जो कुंडलिनी को चेतन करने में सहायक होते हैं। उसके मुख का सूक्ष्मणा में प्रवेश केवल ध्यान की परिपक्व अवस्थाओं से हो सकता है। बिना ध्यान के केवल बाह्य साधनों से कुंडलिनी शक्ति को खूब पहुंचाने से अधिक मूर्छा जैसी अवस्था प्राप्त हो सकती है, जो सुषुप्ति तथा बेहोशी से तो ऊंची है किंतु वास्तव सुप्रूप स्थिति नहीं है और न उसमें सूक्ष्म जागृत ही का कुछ अनुभव हो सकता है। कुंडलिनी जागृत करने का सबसे उत्तम उपाय तो मूलाधार से लेकर सहस्रार तक सब चक्रों का भेदन करना है। विशेष विधि क्रियात्मक होने के कारण लेखबद्ध नहीं की जा सकती, किसी अनुभवी निस्वार्थ पथ प्रदर्शक से ही सीखनी चाहिए। उसकी समान विधि निम्न प्रकार है। चक्र भेदन अर्थात कुंडलिनी योग, बद पद्म दोनों जंगाओं को दोनों पैरों से दबा पद्म सिद्ध वज्र स्वस्तक आदि किसी आसन से मेरुदंड को सीधा किए हुए सिर गर्दन और पीठ को समसूत्र में करके मूलबंद लगाकर खेचरी मुद्रा के साथ बैठें। स्थान आकांत बंद और शुद्ध हो। प्रातःकाल कम से कम 3 घंटे और सायंकाल को 2 घंटे ध्यान करना चाहिए। कपाल पत्ती वस्त्र का आदि और प्राणायाम के पश्चात योनि मुद्रा करके खेचरी मुद्रा करें अर्थात जिह्वा को ऊपर की ओर घुमाकर तालू के पास कंठ के छिद्र में लगाएं और दांतों को दबाए रखें। प्राण मूलाधार चक्र में योनि मंडल से जाकर ऐसी भावना करें कि वही श्वास और पाश्वास चल रहा है, यही वही मानसिक ध्वनि के साथ ओंकार का मानसिक जाप करे। ध्यान करते समय ऐसी भावना करे कि कुंडलिनी शक्ति सुखमना में प्रवेश करके मूलाधार को ऊर्ध्वमुख करती हुई विकसित कर रही है। इस प्रकार जब 6 मास 1 वर्ष अथवा 2 वर्ष में इस चक्कर में ध्यान पक्का हो जाए और प्राण उत्थान भली प्रकार होने लगे तो इसी पांत अगले अगले चक्रों को भेदन करना चाहिए। आज्ञा चक्र और सहस्रार में अधिक समय देना चाहिए। प्रथम चक्रों के ठीक ठीक स्थान निश्चय करने में कठिनाई होगी, किंतु कुछ दिनों के अभ्यास के पश्चात स्वयं यथास्थानों पर मन स्थिर होने लगेगा। ये चक्र भेदन का क्रम दीर्घ काल तक धैर्य के साथ करते रहना चाहिए। सुगमता और शीघ्र सिद्धि प्राप्त करने के विचार से आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र ध्यान के लिए पर्याप्त हैं। यहीं पर विधि पूर्वक ध्यान करने से कुंडलिनी जागृत हो सकती है। यद्यपि निचले चक्रों का विशेष ज्ञान और उनकी विशेष शक्तियां उनके अपने अपने विशेष स्थान पर ध्यान करने के सदृश नहीं प्राप्त होती, डाक गाड़ी से लंबी यात्रा जाने वाले यात्रियों को मार्ग में आने वाले स्टेशनों की भांति इनका सम्मान ही ज्ञान होता है, किंतु दोनों चक्रों पर ध्यान के परिपक्व होने के पश्चात निचले चक्रों का भेदन अति सुगमता और शीघ्रता के साथ हो सकता है। आत्मस्थिति के जिज्ञासु के लिए तो इन चक्रों के चक्कर में अधिक न पड़कर अपने अंतम ध्येय लक्ष्य को रखना ही श्रेयकर है। इन चक्रों पर दो प्रकार के ध्यान किया जाता है, सिद्धियों तथा शक्तियों के प्राप्त करने के उद्देश्य से चक्रों में दी हुई विशेष बातों की विशेष चक्र पर भावना के साथ ध्यान किया जाता है। ये मार्ग तांत्रिकों का है तथा लंबा है। अध्यात्म उन्नति तथा परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से इन सब बातों पर ध्यान न देकर केवल इन ध्यान स्थानों को ध्येय बनाकर अंदर घुसना होता है। ऐसे अभ्यासियों के जो कुछ भी समक्ष आवे उसको दृष्टा रूप से देखता होता है, क्योंकि उनका लक्ष्य केवल परमात्मा तत्व है। कुंडलिनी जागृत करने का एक अनुभूत साधन सबसे प्रथम पाद सूत्र 51 के विशेष वक्तव्य में दी हुई चतरथ प्राणायाम की पांचवी विधि अनुसार प्राण को परम रंध्र में 4-5 घंटे तक स्थिर करने का अभ्यास परिपक्व कर ले। ऊपर जो योग्यता की प्राप्ति के पश्चात शरीर के पूर्ण रूप से स्वस्थ अवस्था में कार्तक से फाल्गुन अर्थात नवंबर मास से मार्च तक के समय में सारे बाह्य व्यवहार से निवृत्ति होकर शांत एकांत निर्विघ्न स्थान में साधन आरंभ करे। बस्ती अथवा इनिमा द्वारा उदर शोधन करते रहें, यदि वश्यकता हो तो धोती और नेति भी करते रहें। भोजन प्रातःकाल बादाम का शौंका बादाम की गिरी छिलके से निकाली हुई सौंफ कासनी काली मिर्च पीस कर छान कर पिसे हुए बादाम के साथ घी में छोंक लिए जाएं। उसमें मनक्के अंजीर आदि डाले जा सकते हैं। रात को दूध चतुर्थ प्राणायाम द्वारा ब्रह्मरंध्र में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थिर करने के पश्चात प्रगटी पर ध्यान अर्थात अंतर्दृष्टि से देखना आरंभ कर दें। यदि इस प्रकार प्राणों का उत्थान न हो सके तो श्वासन से लेट कर शवासन से लेट कर ये प्रक्रिया करें। प्राणों के उत्थान के समय किसी प्रकार के भय की वृत्ति न आने दे। किसी अनुभवी निस्वार्थ पथ प्रदर्शक की संरक्षता में साधन करे। इस प्रक्रिया में की मुख्य वस्तु ईश्वर परिणीतान और तीव्र वैराग है। ब्रह्मरंध्र और प्रगति पर ध्यान करने वाले जिन साधकों को गर्मी के दिनों में इन स्थानों पर ध्यान करने से अधिक गर्मी और खुश्की प्रतीत हो, वे एक एक मास का समय निचले चक्र भेदन में लगा सकते हैं। अर्थात प्रथम एक मास मूलाधार चक्र भेदन समर्थानुसार एक निश्चित संख्या में अनुलोम विलोम पस्तरका, एक निश्चित संख्या में मूलाधार तक मध्यम पस्तरका, एक निश्चित संख्या में मूलाधार चक्र अश्विनी मुद्रा सादृश क्रिया। इसके पश्चात चतुर्थ प्राणायाम की पांचवी विधि अनुसार ओम ओम का मानसिक जाप मूलाधार पर। जब प्राण स्थिर हो जाए तब वहां केवल ध्यान अर्थात अंतर्दृष्टि से टकटकी लगाकर देखते रहना अथवा वहां अनहद शब्द को सुनते रहना। दूसरे मास में विशुद्ध चक्र भेदन इसी प्रकार करें तथा अन्य सब चक्रों में स्व अधिष्ठान चक्र तक इसी प्रक्रिया को रखें। साधकों के लिए चेतावनी, महात्मा मूसा जो यहूदी धर्म के प्रवर्तक हुए हैं उनके संबंध में कहा गया कि हौर्ब पहाड़ पर योग साधन के समय जब उनको प्रथम बार ईश्वर के प्रकाश के दर्शन हुए तो वे उस तेज को सहन न कर सके। इस रास को उनके शेष योग मार्ग से अनभिज्ञ होने के कारण नहीं समझ सके। पहला कुंडलनी शक्ति जब सुषुम्ना नाड़ी के अंदर प्रवेश होती है तब उसकी पहली टक्कर मूलाधार चक्र पर लगती है। इससे उपास इंद्रिय पर दबाव पड़ता है, इसलिए मूल बंध सावधानी से लगाए रखें। उस समय स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत में प्रवेश तथा स्थूल शरीर से सारे प्राणों का प्रवाह सूक्ष्म नाड़ी में जाना आरंभ होने लगता है। सारे बाह्य प्राण हाथ पैर आदि से खिंचाव के साथ अंदर आने लगते हैं। उस समय भयभीत न होना चाहिए, अन्यथा भय की वृत्ति आने के साथ ही प्राण फिर उतर जाएंगे और पछतावा रह जाएगा। विद्युन में सूक्ष्म नाड़ियों चक्रों तन मात्रों तथा तत्वों आदि से प्रकाश इतने अलौकिक होते हैं कि साधक को प्राथमावस्था में उनका सहन करना कठिन हो जाता है। इसी प्रकार सूक्ष्म जगत के शब्द भी अपरिचित होने के कारण अति भयानक प्रतीत होते हैं, इसलिए दृष्टा बनकर देखता रहे, अन्यथा भय की वृत्ति आने के साथ ही कुंडलनी शक्ति जहाँ पहुंची है वहीं से फिर लौट जाएगी। सूक्ष्म जगत स्थूल जगत से अति विलक्षण है, वहाँ की सूक्ष्मता और विलक्षणता भी प्राथम अवस्था में भय का कारण बन सकती है। उससे भय भीत न हो, कभी कभी अप्रिय और भयंकर दृश्य भी सन्मुख आते हैं, वे कुछ हानि नहीं पहुंचा सकते, स्वयं हट जाते हैं। उससे भय उत्पन्न न हो, प्रगति अथवा ब्रह्मरंध्र में प्राण रोक जाने के पश्चात श्वास से लेट कर ध्यान करने से शरीर के सीधे रहने के कारण प्राणों का प्रवाह कुंडली में खींच आने और फिर उसे सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश होने में आसन से बैठने की अपेक्षा सुगमता से होता है, परंतु इस तरह लेट कर क्रिया करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। चित्त लेटने की अवस्था में जब मूलाधार चक्र सारे प्राणों के वेग की टक्कर लगती है और इसलिए उपास इंद्रिय पर अधिक खिंचाव पड़ता है, उस समय मूल बंध पूरी दृढ़ता के साथ बंधा रहना चाहिए। अथवा कमजोर खीण शुक्र वाले के लिए वीर्य अथवा मूत्र निकलने की संभावना हो सकती है। ये सब प्रकार के भय उसी समय तक रहते हैं जब तक कुंडलनी प्रगति तक न पहुंच जाए। आज्ञा चक्र पर स्थिर होने के पश्चात कुछ भय नहीं रहता, वो समय सारे सूक्ष्म जगत का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ये स्वर गिरती जाती है, बुद्धि का ये सब प्रकार के भय उसी समय तक रहते हैं जब तक कुंडलनी प्रगति तक न पहुंच जाए। आज्ञा चक्र पर स्थिर होने के पश्चात कोई भय नहीं रहता, उस समय सारे सूक्ष्म जगत का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। जिस ओर वृत्ति जाती है उसी का यथार्थ स्वरूप समक्ष आने लगता है, यही वास्तविक समाधि है। जब सहस्रार में पहुंचती है तो सारी वृत्तियां अनुरोध होकर असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध होती है। एक बार कुंडलनी जागृत हो जाने पर यह न समझना चाहिए कि सर्वदा ऐसा ही होता रहेगा। मानता शरीर की स्वास्थ्य अवस्था निर्मलता सूक्ष्मता विचारों की पवित्रता और वैराग बना रहना अति आवश्यक है। इसके अभाव से ये कार्य बंद हो सकता है। प्रगति ब्रह्मरंध्र आदि स्थानों पर प्राणों के ठहर जाने को कुंडली जागृत हो जाना न समझना चाहिए, किंतु सारे प्राण का प्रवाह जब स्थूल शरीर से सुषुम्ना नाड़ी में आ जाए और स्थूल शरीर तथा स्थूल जगत से विशुद्ध होकर सूक्ष्म शरीर तथा सूक्ष्म जगत में प्रवेश हो जाए तो कुंडलनी शक्ति का जागृत होना समझना चाहिए। मांस भक्षण करने वाले तो योग मार्ग के अधिकारी ही नहीं हो सकते, इसलिए मांस तो सदा अपक्ष ही है। मादक पदार्थ शराब भंग सुल्फा सिगरेट बीड़ी आदि लाल मिर्च, खटाई, तेल, गृष्ठ, बादी, कोष्ठबद्धता करने वाले और कफ वर्धक तथा तीक्ष्ण पदार्थों का सेवन न करें। ध्यान तथा प्राण के उत्थान से उत्पन्न होने वाली खुश्की और गर्मी को दूर करने के लिए दही, छाछ और मट्ठे का सेवन कदापि न करें। इससे बाजू आदि के कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में किर्त, बादाम, शंका तथा मीठे बादाम का रोगन और दूध लाभदायक होता है। मैथुन, कुसंग, क्रोध, शोक, भय आदि उत्पन्न करने वाली बातें तथा अधिक शारीरिक परिश्रम वाले कार्यों से इन दिनों बचा रहे। आहार सूक्ष्म, सात्विक, स्निग्ध पदार्थ, दाल, मूंग, सब्जी, लौकी, पपीता आदि, दूध की किर्त और बादाम, काशनी, सौंफ, काली मिर्च का छौंका, जिसकी विधि जड़ी है वो जिमें इन्हों सारी चीजा घोट के सरदाई नुन के झोला तुड़का आदि ला के पीना, जिन्हें दिमागी खुशकी दूर रहे एवं मीठे स्वास्थ्य वर्धक फल मेवे का रहना चाहिए। शरीर का शोधन बस्ती अनीमा से होता रहे, अंतों में मल न रहने पावे, न कब्जी रहे, धोती नीति भी होती रहे तो अच्छा है। किसी रेचक औषधि त्रिफल, त्रिफला, त्रिपुटा आदि का सेवन अच्छा है। कुपथ करने से परमेय बाजू विकार, शरीर कंपन आदि रोगों से ग्रस्त हो जाने का भय है। शरीर ब्रह्मचर्य के समान मानसिक तथा अध्यात्मक ब्रह्मचर्य अति आवश्यक है, अर्थात अध्यात्मिक शक्तियों का शरीर कामों में प्रयोग तथा अपने अनुभवों को दूसरे पर प्रकट न करना चाहिए, अन्यथा शक्तियों के खोए जाने की संभावना है। इस मार्ग में अडंबर बनावट से बचते हुए अपनी शक्तियों को तथा अनुभवों को छपाए हुए साधारण अवस्था में रहना कल्याणकारी है। जिसको कोई संत या असंत, आश्रुत या बहुश्रुत, सुविरत या दुर्विरत नहीं जानता, वह ब्रह्मनिष्ठ योगी है। मूढ़ धर्म का पालन करता हुआ विद्वान योगी दूसरे के अज्ञात चरित रहे, अंधे के समान, जड़ के समान और मूक के समान पृथ्वी पर विचरण करे और बाकी जड़े दूसरे है, फिर दृष्ट ध्यान की निचली प्रकाशरत वस्तुओं में ही सामने आते हैं और अधिकतर अपना कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं रखते। मन की एकाग्रता में अपने ही पिछले संस्कार व्यक्ति रूप से उदय हो जाते हैं। निर्भय होकर उनको दृष्टा बनकर देखता रहे और यदि कोई अभ्यासी अपने पिछले संस्कार वश इनको वास्तविक रूप से ही अनुभव करे और उनसे अपना अनिष्ट समझकर उनको हटाना चाहे तो संस्कार मात्र से ही अथवा ओम या गायत्री के जाप से तुरंत ही आदृश हो जाएंगे और जो ज्योतिर्मयी अद्भुत दिव्य प्रकाश के सामने आते हैं उनमें भी असक्त ना हो, केवल दृष्टा रूप से देखता रहे। वे भी अधिकतर अपने ही सात्विक संस्कार होते हैं। जो चित्त की परमाश प्रकाश में अवस्था में व्यक्ति रूप से उदय होते हैं तथा ब्रह्म लोक तक जो सात्विक संसार है वे भी चित्त की व्यक्ति रूप से ही है, दृष्टा के सामने आता है। संप्रज्ञा समाधि की ये प्रकाश में अवस्था उस सबीज मुक्ति का अनुभव कराती है। योग की शक्तियों को संसारिक व्यवहार की बातों में प्रयोग करना एहतकर है। इस संबंध में एक साधक ने जो अपनी प्रारंभिक अवस्था अनुभव बतलाया है उनको अन्य साधकों के हितार्थ लिखते हैं। उस अभ्यासी ने बताया कि बड़े ताप और साधन के पश्चात जब उसको किसी एक आसन से 6-7 घंटे बैठने का अभ्यास हो गया और प्राण भी किसी विशेष स्थान उतनी देर स्थिर होने लगे, तब गुरु कृपा और ईश्वर अनुग्रह से एक रात 2 बजे के समय कुंडलनी जागृत हुई। उस दिन से लगभग 2 बजे रात के चाहे वह जागता हो, सोता हो, बैठा हो या भजन कर रहा हो, स्वयं में विचित्र सनसनाहट के शब्दों के साथ उसके शरीर के सारे स्थूल प्राण सूक्ष्म नाड़ी प्रवेश कर जाते और स्थूल शरीर से परे होकर सूक्ष्म जल के नाना प्रकार के अनुभवों को वह ग्रहण करने लगता। कुछ दिनों तक इसी प्रकार से कार्यक्रम चलता रहा। उसने फिर पश्चात स्पिरिचुअलिज्म की बातें मैं सुन रखा था कि सब मृतक आत्मों से बातचीत हो सकती है। वास्तव में ये बात ठीक नहीं। इसको वक्तव्य से सम्मोहित शक्ति के प्रकरण में समझाया जाएगा। उसका एक संबंधी जिसके प्रति उसका मोह था कुछ समय पूर्व मर चुका था। एक दिन उसने संकल्प किया कि आज रात अपने निश्चित समय पर उसको देखेंगे कि वह कहाँ है। ठीक रात के 2 बजे पश्चात जब सूक्ष्म जगत के अनुपा कार्य आरम्भ हुआ तो उसके समक्ष एक गर्भ आया। पूछने पर अपमान और घृणा के साथ बताया गया कि वह व्यक्ति है जिसको तुम देखना चाहते हो। इस गर्भ रूप में अमुक कार और अमुक स्थान में है। यह सब बातें कई मास के पश्चात ठीक निकली, किंतु उसी दिन उसका साधक का वह कार्य बंद हो गया और 2 वर्ष तक कई किरणत रोगों से ग्रस्त रहा, जिसके कारण अभ्यास पर बैठना असंभव हो गया। अंत में रात पर गांठ वाले फोड़े निकलने आरंभ हुए। जब 5वां फोड़ा निकल रहा था तब एक दिन उसको अपनी इस अधोगति की अवस्था पर अत्यंत शोक और दुख हुआ। उस रात दोनों हाथों के नीचे की ओर सीधा करके दीवार का सहारा लेकर यह निश्चित कर लिया कि पिछली अवस्था को प्राप्त किए बिना न उठेगा। अधिक समय बीतने के पश्चात उस अवस्था में प्रकाश के साथ एक आवाज आई, काले आएंगे। उसने ऊपर दिया, कहीं आज ही आना पड़ेगा। उसने उत्तर दिया, नहीं आज ही आना पड़ेगा। थोड़ी देर पश्चात उस प्रकाश में एक और अत्यंत दिव्य प्रकाश के साथ एक विशाल दिव्य प्रकाश में आकृति उसके सामने आई। उस समय की सारी बातें बैसाल बतलाना नहीं चाहता, किंतु उस सारी रात तथा उसके पश्चात कई दिन सुरीले मनोरंजक वेदों के मंत्र सुनाई देते रहे। उस दिन से उसका कार्य फिर पूर्वत आरंभ हो गया, किंतु जय उससे कुछ विचित्र रूप का था। इससे पिछली जैसी मनोरंजकता और आकर्षण तो ना था, किंतु वो सियादक अध्यात्मता की ओर ले जाने वाला था। संभव है कि पिछले अनुभवों की सूक्ष्मता को आधक समय तक सहन करने योग उसका स्थूल शरीर ना हो और उसको विशेष भोगों का भोगना और विशेष कार्यों का करना हो। ईश्वर की ओर जो कुछ भी होता है वह मनुष्य के कल्याणार्थ ही होता है, किंतु हमारा आदेश केवल इतना बता देना है कि इन शक्तियों का संसार कार्यों में प्रयोग ना करना चाहिए। अपने अनु को दूसरे पर प्रकट करने में यहाँ अपनी इन शक्तियों का ह्रास होना तथा अपमान और अहंकार का होना है, जहाँ दूसरे के लिए भी हितकर है, जो कि रहस्यपूर्ण बातों को साधारण लोग समझने में असमर्थ होते हैं। परिणाम रूप कुछ अंधविश्वासी बनकर धोखा खाते हैं और कुछ पखंड रचकर सीधे सच्चे लोगों को धोखा देते हैं। परस्पर भी एक दूसरे को अनुभव बताने में राग द्वेष असंतोष और अपमान की वृत्तियां उदय होकर साधना में विघ्नकारी होती है।